कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हम गिनती की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 और 9 से करेंगे। तो आज का विषय हमारे लिए होगा दीवट और लेवियों द्वारा दीपकों को जलाना। मित्रों, इस अध्याय में पवित्र स्थान में दीवट पर दीपकों को जलाने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वप्रथम तो यह प्रतीत होता है कि दीवट का अब कोई स्थान नहीं रहा, परंतु निर्गमन की पुस्तक में तंबू में दीवट के बारे में निर्देश मिलते हैं। परंतु जब हम इसे नजदीक से देखते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर किसी विशेष कारण से यहाँ इनकी चर्चा करवाता है। अध्याय 8 के इस भाग में निर्जन प्रदेश की यात्रा की तैयारी में स्वच्छता अभियान जारी है, जो परमेश्वर के पीछे चलने और उसकी सेवा करने को उत्सुक हैं। उन्हें शुद्ध होना था। तो आइए हम दीवट का प्रकाश देखें। अध्याय 8 उसके 1 से 4 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझा कर यह कह कि जब जब तू दीपकों को बारे तब तब सातों दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को बारा कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। और दीवट की बनावट यह थी, अर्थात यह पाय से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। मित्रों, यह सुंदर दीवट मिलाप तंबू की साज सामान की एक अनूठी वस्तु थी। दीपाधार पीटे सोने से बनाया था। किसी कारीगर ने उसे ऐसा आकार दिया कि बादाम की डालियां पर बादाम के बड़े फूल खिलते, जिसकी हर डाली पर दीपकों का स्थान था। ऊपर का प्रकाश दीपाधार की सुंदरता में 4 चांद लगाया था। मित्रों, मिलाप तंबू में यीशु मसीह की यह सबसे सुंदर और मनोहर चित्रण है। प्रज्वलित दीपक पवित्र आत्मा के प्रतीक हैं, जो मसीह की महिमा वर्णित करते हैं। दीवट मसीह का प्रतीक है जो संसार को प्रकाशित करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मसीह की बातों को लेकर हम पर प्रकाशित करता है। मित्रों, अब हमें समझ में आता है कि दीपाधार को प्रधानों की भेंटों तथा लेवीय लोगों की शुद्धता के बीच क्यों चर्चा की गई। इससे हमें याद आता है कि प्रत्येक बात मसीह के प्रकाश में ही की जानी चाहिए। इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? इसका मतलब है कि भेंटें और सेवाएं सब उसकी उपस्थिति एवं प्रकाश में किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सब उसके वचन के अनुसार होना है। यह वह स्थान है जहां से कलीसिया को निर्देश प्राप्त करना है, न कि कलीसिया की पुस्तक व किसी अन्य स्रोत से, परंतु केवल परमेश्वर के वचन से। मित्रों, दीवट ज्योति है और प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। वह परमेश्वर के वचन द्वारा प्रकाशित है। आइए अब हम आगे देखते हैं लेवीय समर्पित। इस अध्याय का बाकी भाग लेवी लोगों की शुद्धता समर्पण से संबंधित है। उन्हें शुद्धता के लिए पानी छिड़कने के निकट आना था, यद्यपि इसके पूर्व वे अपने को वेदी के सामने प्रस्तुत कर चुके थे, जो प्रभु यीशु के क्रूस का प्रतीक है। अब हमें ज्ञात है कि परमेश्वर अपने सेवकों को शुद्ध एवं पवित्र रखेगा। हम गिनती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। मित्रों, यदि परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करना है तो वह आपको शुद्ध भी करेगा। उसका इस कार्य को करने के लिए अपना ही अलग तरीका होगा। अब ध्यान दें कि लेवीय वंशज किस प्रकार शुद्ध किए गए। गिनती 8 उसके 7 और 8 पद में आगे पढ़ते हैं, उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को स्वच्छ करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले लें और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। यहां पर ध्यान दीजिए, पहला शुद्धता के जल को उनके ऊपर छिड़कना था और वे वेदी अर्थात हौद के निकट होना था। दूसरा उन्हें अपने देह पर उस्त्रा फिराना था और तीसरी बात अपने वस्त्र को धोकर शुद्ध कर लें और चौथी बात तब वे अन्न बलि और पाप बलि की भेंट चढ़ाएं। मित्रों, क्या आप याद रखते हैं कि परमेश्वर ने लेवी के विषय में क्या कहा है? लेवी याकूब का एक पुत्र था और जब याकूब ने उसे आशीषित किया तो उसने कहा, शमौन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के हथियार हैं, मेरा मन उनकी सलाह ना माने, मेरी महिमा उनकी सभा में ना मिले, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध में एक मनुष्य को घात किया और स्वेच्छाधारी होकर बैल की पूंछ काटी। धिक्कार है उनके क्रोध को क्योंकि वह प्रचंड था और उनका रोष क्योंकि वह निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में तितर बितर कर दूंगा। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पाते हैं। मित्रों, सचमुच उन्हें शुद्धता की आवश्यकता थी। परमेश्वर की संतान के लिए आजकल सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि कैसे चलना है पर कहां चलना है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 1 अध्याय और उसके 7 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, आप देखते हैं कि प्रकाश और पानी यहां दोनों साथ साथ हैं। जब आप ज्योति में चलते हैं तो जीवन में पाई जाने वाली सारी गलतियां दिखाई पड़ती हैं। तब आप उसे दूर करने वाले हौदे अर्थात पानी के टंकी के पास जाते हैं, जिसका अर्थ पापों का अंगीकार है। कृपया उन 4 बातों अर्थात सीढ़ियों को ध्यान से सुने जो यहां शुद्धता के लिए बताई गई है। पहला है, उन पर शुद्ध करने वाला जल छिड़क दे। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु ने शिष्यों के पैर धोए। शमौन पत्रस ने विरोध किया, परंतु प्रभु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय उसके 8 पद में हम इसे पाते हैं। इसका अर्थ तुम्हारी मेरे साथ कुछ भी संगति नहीं, मेरे साथ कोई भागीदारी नहीं। मित्रों, इसी बात को यूहन्ना ने अपनी पत्री में समझाया है। परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है। निश्चित ही हाँ, परंतु जब मैं प्रकाश में चलता हूं तो जीवन की सभी गलत बातें भी दिख पड़ती है। तब मैं क्या करूं? प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वह हमें शुद्ध करता रहता है जब तक हम उसके सामने अंगीकार करते रहते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, यह सबसे जरूरी और आवश्यक है। यह विश्वासियों के लिए भी है। यदि आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आपको पापों से क्षमा मांगनी होगी। माफी की वेदी ही वही स्थान है जहां पापी मनुष्य को उद्धार के लिए परमेश्वर के निकट आना है, और पानी के हौद विश्वासी के लिए है जहां परमेश्वर के संत लोग ईश्वर द्वारा शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं, वे अपनी पूरी देह पर उस्त्रा फिरवाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है, वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुदे दोनों को आर पार वेधता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में गहराई से जाकर सभी गलत बातों का पता लगाता है जिनकी आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपको एक तेज धार वाले रेजर की आवश्यकता है। आप नहीं सोचते हैं कि आप में कोई दोष है, अतः धार वाले रेजर को निकालें, परमेश्वर के वचन का प्रयोग करें। यह कोमल है परंतु धार वाले रेजर के समान है जो आपकी बुराइयों को कुरेद कर निकाल सकता है। अब तीसरी बात है, और अपने वस्त्रों को धोएं। प्रिय मित्र, वस्त्र जीवन की आदतों के घोतक हैं। वस्त्रों के प्रयोग को लेकर अथवा पहचानने के लिए हम उन्हें कई नाम से जैसे चालू कपड़े, भारी कपड़े का प्रयोग करते हैं। हमें वस्त्रों का धोना जरूरी है। हमारी कई आदतें ऐसी हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए क्योंकि उनसे प्रभु के लिए हमारी गवाही में ठेस पहुंचती है। अब चौथी बात है, तब वे पाप बलि चढ़ाएं। एक बछड़ा की आवश्यकता साथ में अन्न बलि तथा दूसरा बछड़ा पाप बलि के लिए होना है। ये भेंट बलि, जैसा हम देख चुके हैं कि मसीह यीशु के संबंध में है, अग्नि बलि से प्रकट है कि वह कौन है। अन्न बलि उसके निर्दोष सिद्धता के बारे में बयान करती है। मेरे मित्रों, मेल बलि उसके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेल अर्थात शांति की चर्चा करती है। पाप बलि से बोध होता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। दूसरे शब्दों में, सारी शुद्धता और पवित्रता का कार्य मसीह के व्यक्तित्व अथवा कार्य के लिए किया गया है। उसने यह सब कुछ हमारे लिए किया। उसने इसलिए किया कि हम उसकी सेवा करने के योग्य बन जाएं। हम गिनती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना और इसराइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इसराइली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इसराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरें। मित्रों, अब हम इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। आप एकल गान गा सकते हैं, उपदेश देते, संडे स्कूल की कक्षा पढ़ाते, चर्च में पदाधिकारी बनते, परंतु आप उस समय तक प्रभावशाली नहीं बनते हैं जब तक परमेश्वर के वचन के प्रकाश में शुद्धता और पवित्रता ग्रहण न कर लें। अपने आप को वचन के प्रकाश में जांचना होगा। जब गलती मालूम हो तो उसके सामने अपने पाप का अंगीकार करें, और आपको पता है कि वह क्षमा करता है और शुद्धता भी देता है। जो कुछ विघ्न अर्थात बाधा है, उसे वचन की पैनी धार से काट दें। आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। मेरे मित्र, यदि आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तब बहुत से लोगों ने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी गवाही को निरस्त कर दिया है, और शुद्धता के बारे में तो सबों को यीशु मसीह के व्यक्तित्व का व उसके कार्य पर निर्भर रहना है। हम जानते हैं कि यह सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि लेवी लोग प्रभु की सेवा के योग्य बने। यदि आज आप भी सेवा करना चाहते हैं तो आपको भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। न केवल सेवा परंतु आपका विश्वास उसमें स्थिर रहने के लिए भी। हम गिनती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं, और उन्हें इसराइलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इसराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इसराइलियों में से एक एक स्त्री के पहलौठे की संति अपना कर लिया है। इसराइलियों के पहलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला, और मैंने इसराइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इसराइलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इसराइलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब इसराइली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आप पढ़े। मित्रों याद कीजिए, हमारे प्रभु ने विश्वासियों के बारे में अपनी महायाजकीय प्रार्थना में इस प्रकार कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 6 पद में हम पाते हैं, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है। मित्रों प्रभु यीशु ने एक कीमत चुकाई है और उसके लहू अर्थात रक्त के द्वारा खरीद कर पुनः पिता परमेश्वर को सौंप दिया। अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उपहार स्वरूप हमें दे दिया है ताकि हम उसके लोग हो जाएं। अब उसकी सेवा व्यवस्था नियम कानून पर आधारित नहीं है, यह प्रभु यीशु की सेवा करने का तरीका नहीं है। हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम प्रेम करते हैं। मित्रों उसके साथ अब हमारे संबंध बिल्कुल नए हैं, हम उसके साथ जुड़ गए, उसका एक भाग बन गए। यह जानना कितना उत्साहवर्धक है कि अब हम छोटे मोटे नियम कानूनों के अधीन नहीं है, परंतु यह मामला उसे प्रसन्न करने का है और यह कितना अद्भुत अनुभव है। मित्रों अब हम गिनती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 24 से 26 पद में पढ़ते हैं, जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें, और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। मित्रों ध्यान दीजिए कि मंदिर में सेवा करने का अधिकार लेवीय पुरुष को 25 वर्ष की आयु से मिलता था। पिछले 4 अध्याय में हमने पढ़ा कि याजकीय अर्थात पुरोहित सेवकाई में आने की आयु 30 वर्ष बताई गई थी। पुरोहित की सेवा 30 से आरंभ होकर 50 वर्ष तक थी। तंबू की स्थापना, प्रस्थान के समय उखाड़ना और उससे संबंधित अनेक कार्य 25 से 50 वर्ष की अवधि में ही किए जाते थे। गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की आयु 25 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए थी। यहाँ भरोसे की आयु का प्रश्न उठता है। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 29 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, तुम में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने लोग गिने गए थे और जो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, उनके शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। स्पष्टतः इस उदाहरण में जवाबदेही की उम्र 20 वर्ष बताई गई है। जो लड़का 19 वर्ष का था उसे प्रतिज्ञा देश में जाने की इजाजत मिली थी, और 20 वर्षीय युवक को जो कुड़कुड़ाया वह जंगल में ही ढेर हो गया अर्थात मर गया। मित्रों मेरा मानना है कि जवाबदेही की उम्र हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक रही होगी। हम सोचते हैं कि एक छोटा बालक जिम्मेवार है, परंतु लेखक ऐसा नहीं सोचते हैं। एक छोटा बालक भी प्रभु को ग्रहण कर सकता है। ऐसा मालूम पड़ा है कि 4 वर्षीय बालक ने भी प्रभु को ग्रहण किया है। मेरे विचार से उत्तरदायित्व की उम्र विभिन्न लोगों में भिन्न होगी। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने सेवा के भिन्न भिन्न कार्यों के लिए विभिन्न आयु निर्धारित की है। एक पुरुष 20 वर्ष की आयु में सैनिक बन सकता था, लेवीय तंबू की सेवा 25 वर्ष में करता था, और एक पुरोहित अर्थात याजकीय सेवा 30 वर्ष में आरंभ करता था। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लड़के व लड़कियों को प्रोत्साहित करें कि वे प्रभु यीशु को जितना शीघ्र हो अपना निजी मुक्तिदाता स्वीकार करें। हमारे बालकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वे प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखना सीख लें ताकि वे उसकी निकटता में बढ़ सकें। मित्रों यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 9 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, और इस अध्याय का विषय है पास्का अर्थात फसा मनाना, निवास स्थान पर बादल। आइए हम देखें सभों के द्वारा जंगल में फसा पर्व मनाना। हम गिनती की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इसराइली फसा नाम पर्व को उसके नियत समय पर माना करना। मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइली लोग जब जंगल में थे तो वे फसा का पर्व मनाते थे, सो वे इस दिन अर्थात मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष में फसा मनाते थे। फसा के उत्सव मनाते समय एक समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग जो शव के कारण अशुद्ध हुए थे वे इस कारण फसा नहीं मना सके। उन्होंने मूसा और हारून के पास आकर उनसे पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। हम आगे देखते हैं गिनती 9 अध्याय उसके 8 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। मूसा ने किसी चर्च अनुशासन की पुस्तक में नहीं खोजा और न ही रॉबर्ट रूल्स ऑफ ऑर्डर की मदद ली। उसने सीधे ईश्वर से याचना की। मित्रों, मैं पुनः दोहराता हूं कि आज भी हमें परमेश्वर के वचन की दुहाई देना चाहिए। परमेश्वर की संतान के लिए वही अधिकृत पुस्तक है। अब मैं समझता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुवाद पर इतने मतभेद क्यों हैं। इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए और सोच समझकर सही प्रकार से व्याख्या भी करना चाहिए। हम गिनती की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि वे चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंशज में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो वह दूर की यात्रा पर हो तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधली के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। मित्रों, वे लोग जो निश्चित समय पर फसह का पर्व मनाने में असमर्थ रहे वे अब एक माह पश्चात उसी फसह को मना सके। हम अब आगे देखते हैं दिन को बादल और रात को अग्नि का खंभा। हम गिनती की पुस्तक 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल का छाया रहता और रात को आग भी दिखाई देती थी। मित्रों, इसराइली लोगों पर आच्छादित बादल था जो शकीना ग्लोरी अर्थात प्रभु का तेज। यह ऐसी बात थी जो उन्हें अन्य राष्ट्रों से भिन्न करती थी। जब पौलुस रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 4 और 5 पद में इसराइलियों की विशेषता के चिन्ह बताते हुए कहता है, वे इसराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार महिमा वाचाएं व्यवस्था उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पूर्वज उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के अनुसार उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर युगानुयुग धन्य परमेश्वर है। मित्रों, यहाँ उसकी महिमा का वखान करता है। ये केवल ऐसे लोग थे जिनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। हम गिनती की पुस्तक 9 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे पढ़ते हैं, यहोवा की आज्ञा से इसराइल एली कूच करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब इसराइली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। मित्रों, मूसा को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं था कि उनका प्रस्थान आज कल या शिविर में कितने दिन तक रहना होगा। परमेश्वर इसका निर्णायक थे। मित्रों, हमें वर्तमान में सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु ही कलीसिया के सिर हैं, वही है जिनको अगुवाई करना चाहिए। समस्या यह है कि चर्च अपने ढंग से इतनी बातों में इतना व्यस्त है कि उसे प्रभु से पूछने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, परंतु मसीह फिर भी उसकी कलीसिया के सिर हैं और वे जो उसके हैं उसके अनुयायी बनेंगे और उसका अनुकरण करते रहेंगे। आप ध्यान देंगे कि अक्सर वे शिविरों में कई दिनों तक, महीनों तक और सीनै पर्वत पर तो लगभग वर्ष भर टिके रहे। वे जंगल अर्थात निर्जन प्रदेश में 40 वर्ष तक घूमते रहे। मित्रों, अब हम आगे पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, वह बादल चाहे दो दिन चाहे एक महीना चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इसराइली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। मित्रों, प्रातः जब आच्छादित बादल उठ जाता था तो उन्हें मालूम हो जाता था कि यह प्रस्थान करने का दिन है। लेवी लोग तुरंत तंबू उखाड़ने में लग जाते और मेरा मानना है कि इसमें उन्हें 30 मिनट लगता होगा और इतनी जल्दी ही शाम को उसे खड़ा भी कर देते होंगे। तब बादल का खंभा जो उनकी अगुवाई करता था उस पर छा जाता होगा। यह आच्छादित बादल का अग्नि परमेश्वर को दिखाई पड़ने वाली उपस्थिति थी, उनके मध्य थी। और जब उनकी जंगल यात्रा समाप्त हो गई और वे कनान देश में निवास करने लगे तो राजा सुलेमान ने उनके लिए एक घुमंकड़ अर्थात चलता फिरता गतिशील तंबू की अपेक्षा एक स्थिर मंदिर की स्थापना की। तब ऐसा हुआ, जिसे हम पहला राजा 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, कि जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा का भवन बादल से भर गया। अतः बादल के कारण याजक सेवा करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मित्रों, नोट कीजिए कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से मंदिर को भर दिया, परंतु बाद में जब इसराइल यहोवा परमेश्वर से विमुख हुआ तो प्रभु का तेज अर्थात शकीना ग्लोरी मंदिर से उठ गया। यजकेल नबी इसे धीरे धीरे प्रस्थान बताते हैं, मानो वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तब आकाश में विलुप्त हो गया। प्रभु यीशु के विषय यूहन्ना ने लिखा है, और हमने उसकी महिमा देखी, परंतु उसके प्रथम आगमन के समय ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसी महिमा को उसने त्याग दिया जब वह धरती में जन्म लिया। उसने अपने ईश्वरत्व को नहीं परंतु अपनी महिमा को त्यागा। मित्रों, जब वह पुनः आगमन करेंगे तो मनुष्य के पुत्र के आने के चिन्ह आकाश में दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि वह प्रभु का तेज ही होगा। मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ पृथ्वी पर उतरेंगे। वे चिन्ह कलीसिया के लिए नहीं है। हमें कभी भी कोई दृश्य अर्थात चिन्ह परमेश्वर की उपस्थिति का नहीं मिला, परंतु इसके अतिरिक्त या इसके बदले में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर निवास करती है। पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा विश्वासी के अंदर आज भी निवास करती है। मेरे मित्र, कितनी महान सच्चाइयां हमारे लिए इसमें दी गई है। लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप में उपस्थित है? यदि नहीं तो आज ही अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाइए और उसे अपना जीवन सौंप दीजिए। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित कीजिए। अपने हरेक बुराइयों को छोड़ उसको अपना लीजिए और देखिए कि प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद प्रदान करेंगे, जिस प्रकार वह इसराइलियों के संग रहा वह आपके संग भी रहेंगे। क्या आप उसे अपने जीवन में जगह देंगे? मित्रों, निर्णय आज ही करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।